उपस्थित सुधीजनों, देवियों, पिछले रविवार को रामनवमी से पहले हमने यजुर्वेद के 40वां अध्याय, जिसे हम ईशावास्योपनिषद कहते हैं, उसका एक मंत्र आपके सामने रखा था, अनेजदेकम मनसो जवीयो। उसी से संबंधित अगला मंत्र है, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदू सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो आत्मा चलती भी है, नहीं भी चलती है, वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो बाहर भी है, वो अंदर भी है, ये उसका अनुवाद है। जब कभी आप वेद या उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको ऐसे हजारों जगह पर विरोधी बातें मिलेंगे, विरोधी मतलब कंट्राडिक्टरी, एक दूसरे को काटने वाले, जो सोचने की शक्ति रखते हैं उनके लिए बड़ा उठपटांग बातें हैं, क्योंकि जो दूर होगा वो नजदीक हो ही नहीं सकता, तो नजदीक होगा वो दूर कैसे होगा, जो चलता है उसको आप कैसे कहोगे वो नहीं चलता, अगर वो नहीं चलता फिर कहते वो चलता है। ये सिर्फ ये मंत्र नहीं है, ये आप उपनिषद पढ़ते जाएंगे आपको ऐसे सैकड़ों मंत्र मिलेंगे। केनोपनिषद में आता है, जो जानता है वो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता वो जानता है। अगर आपको इनकी पृष्ठभूमि पता नहीं है, इनका बैकग्राउंड पता नहीं है उपनिषद पढ़ने से पहले, तो लगेगा ये पागलों ने लिखा है उटपटांग बातें। और हुआ भी, पश्चिमी विद्वानों ने यही कहा जो वेद और उपनिषदों को पढ़ा, बोले ये सब गडरियों के गाना टाइप का है, कुछ भी उटपटांग है, पागल लोगों का गाना है। ऋषि पागल थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी ज्ञान की गहराई में उतर जाएंगे फिर आप अपने घर वालों के लिए पागल हो जाते हैं, अपने समाज के लिए पागल हो जाते हैं, फिर आप वो बातें नहीं करते जो हम आम रोज सुनते हैं बोलते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं जो दूसरों के पल्ले नहीं पड़ता, फिर लोग आपको पागल ही कहते हैं। हर वो वैज्ञानिक, हर वो दार्शनिक, हर वो ऋषि पागल ही तो कहला जाते हैं अपने अपने समाज में, क्योंकि सत्य जानना उसकी गहराई में जाने पर होता है, और जो व्यक्ति गहराई में जाता है उसको सत्य का पता चलता, उसको बता पाने के लिए भाषा कम पड़ जाती है। जैसे आप देखेंगे विज्ञान में जो नए नए आविष्कार होते हैं, वो चिकित्सा विज्ञान हो, मेडिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो बड़े टर्मिनोलॉजी, बड़े पारिभाषिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनको हमारे जुबान पर चढ़ता ही नहीं है। ये डॉक्टर लोग जब वो सीधी साधी या तुलसी का पत्ता कहो, बेल का पत्ता कहो, वो उसको इतने बड़े बड़े शब्दों में बोलते हैं, वो तो याद रखना तो दूर है, जीभ में चढ़ता ही नहीं है। क्यों? जब आप ज्ञान की गहराई में जाते हैं आपको शब्द कम पड़ते हैं, शब्द गढ़ना पड़ता है, आम लोगों के लिए बड़ा उटपटांग लगता है, तर्क कभी कभी काम नहीं करता है। तर्क है कि दो विरोधी चीजें साथ हो ही नहीं सकती है, अगर दिन है तो रात नहीं हो सकता, अगर रात है तो फिर दिन नहीं हो सकता, यह तर्क है। अगर ठंड है तो गर्मी नहीं होनी चाहिए, अगर गर्मी है तो फिर ठंड नहीं होनी चाहिए, यह नहीं कह सकते कि गर्मी भी है, ठंड भी है, दिन भी है, रात भी है, अंधेरा भी है प्रकाश भी है, ये झूठ भी है सच भी है। अब ये दोनों विरोधी एक जगह नहीं हो सकते। सोचने समझने वालों के लिए ये बकवास है। हजारों सालों तक हमें लगा कि ये बकवास है कि दो विरोधी चीजें साथ कैसे होंगे। प्रकाश की मात्रा में हेरा फेरी, मात्रा समझते हैं डिग्री। अगर लाइट की प्रकाश की डिग्री ज्यादा हो जाए तो उजाला आपको दिन लगता है, कम हो जाए तो शाम दिखता है, और कम हो जाए तो रात हो जाती है। रात भी प्रकाश का एक अंग है, कम मात्रा वाली। सुख और दुख दो अलग अलग चीजें नहीं है हमारे संस्कृति में। सुख कम हो जाए दुख लगता है, दुख कम हो जाए तो सुख लगता है। इसीलिए जिन चीजों में कल तक आपको मजा आ रहा था आज आपको बड़ा इरिटेशन हो रहा है। आपने कहा दोस्त के घर गए, रिलेटिव के घर गए, पूछा क्या अच्छा लगता है, रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, 3-4 किलो रसगुल्ले ले आए रिलेटिव, सुबह नाश्ते में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में, अगले दिन सुबह नाश्ते में रसगुल्ले खिलाए, 5-5, 10-10। 3 दिन के बाद आपको उल्टी आने लगती है, फिर आप दूर रहते हैं, या रसगुल्ला बंद करो, नीम का पत्ता दे दो खा लूंगा, ये छोड़ दो। क्यों? परसों तो आप कह रहे थे आपको रसगुल्ला सबसे ज्यादा पसंद है, अब पसंद नहीं है, छोड़ दो ना, भूखा रह जाऊंगा, ये मत दो। रसगुल्ले में सुख नहीं है या दुख नहीं है, सुख और दुख आपके अंदर है। वो सुख जब ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है वो दुख के रूप में जाता है, दुख में कम बहुत होता है वो सुख में बदल जाता है। सुख दुख दो अलग चीजें नहीं है, अपनी मात्राओं में डिग्री में फर्क होने पर आपको कैसा एहसास होता है। आपको ठंड अच्छा लगता है, यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सर्दी में आपको ठंड अच्छा नहीं लगता। आपको अभी गर्मी बुरी लगती है, इसके लिए आप अभी शब्द का यूज करना पड़ता है। आप यह नहीं कह सकते कि गर्मी बुरी लगती है, क्योंकि ठंड में गर्मी अच्छी लगती है। तो कोई बुरा अच्छा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि हम हमारे लिए वो कितना उपयोगी है तो अच्छा, उपयोगी नहीं है तो बुरा। आप देखते हैं अपने घर में, अगर आपके 10-20 साल आप किसी घर में रह गए हैं और आपको घर बदलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बड़ी मुसीबतें होती है। पता चलता है घर में 50% मतलब 50% चीजें ऐसे हैं जो बेकार के थे, इनको क्यों रखा था, अब इनको कहां समेटूं, कहां फेंकूं, क्या करूं। पर जब आप उसको संभाल के रख रहे थे तो रख रहे थे। कपड़े पता चला 60% कपड़े हैं जो कभी यूज की हो ही नहीं रहे, सालों से जमे पड़े। इतने बर्तन रखे हैं तो कभी छुए ही नहीं थे, अब क्या करें, सारा सामान तो शिफ्ट नहीं कर सकते इधर उधर, फेंकने में उनको आपके सर दर्द हो जाता है। जब आप खरीद रहे थे बाजार से तब आपको उसकी जरूरत महसूस हो रही थी, वो बड़ा अच्छा लग रहा था, आज वही चीजें आपको बड़ा बुरा लग रहा है, फेंकने को भी आपके पास टाइम नहीं होता है। कल तक जो जरूरी था आज वो बेकार हो जाता है। दिन और रात ये विरोधी नहीं है आपस में, सुख और दुख, सब ठंड और गर्मी, मात्राओं में फर्क है। इतने डिग्री, अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो ठंड है, 50 डिग्री सेल्सियस है तो गर्मी है। तो ठंड और गर्मी दोनों के विरोधी नहीं है, मात्राओं में कमी है। दो विरोधी जो दिखते हैं वो तथ्यतः फैक्चुअली दो विरोधी नहीं है, मात्राओं की कमी है। आत्मा गतिशील है,
गतिशील नहीं है, दूर है नजदीक है, अंदर है बाहर है, दिखने में सुनने में दो विरोधी लगते हैं पर विरोधी नहीं है। कैसे? अगर आपने इससे पहले वाला प्रवचन सुना होगा जिसमें हमने अनेजद एकम की व्याख्या की थी, वो आत्मा की परिभाषा देते हुए हमने चर्चा की थी, जैसे एक चाक है, व्हील है, उसके अंदर एक कील होता है, वो कील को स्थिर होना होता है पहिया को घूमने के लिए, जो टर्नेडो आता है, वो जो जो घूर्णीवात आता है, चारों तरफ से हवा चक्कर लगाकर आता है, कितनी बर्बादियां करता है, पर उसके अंदर एक कील होता है जहां कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता है, बिल्कुल शांत होता है, वो उस टर्नेडो का कील है। गाड़ी की पहिया का बीच का कील स्थिर होगा तभी पहिया ढंग से घूम सकती है। आप 100 किलोमीटर स्पीड में चलाओ, 300 किलोमीटर स्पीड में, उसको स्थिर होना जरूरी है। शरीर में सब कुछ बदल रहा है क्योंकि आत्मा स्थिर है, पर समस्या है कील स्थिर है, उसमें गति नहीं है। पर आपकी गाड़ी अगर 5000 किलोमीटर चली तो कील भी 5000 किलोमीटर पर पहुंच जाता है। आत्मा में गति नहीं है, यह निश्चल है, निष्क्रिय है, शांत है, पर हजारों जन्म गति कर चुका है, आ चुका है, कितने शरीर बदल चुका है यह शरीर। गीता में आप पढ़ते कपड़ों की तरह शरीर बदलता है यह आत्मा, हजारों शरीर बदल चुके हैं। आपके शरीर में बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आई वगैरह वगैरह, बीमारी आई, सुख आया, दुख आया, कितने बदलाव आए। आत्मा में कोई बदलाव नहीं आया, उसके बावजूद भी वो शरीर के साथ साथ वो भी बुढ़ापा जवानी सब कुछ उसको एहसास हुआ। आत्मा स्थिर है, उसमें गति नहीं है, तो भी गति करता है क्योंकि जिनके बीच में है वो गति करते हैं। पहिया का कील में गति नहीं है, मूवमेंट नहीं है, पर क्योंकि कील के कारण पहिया गति करती है तो कील भी साथ साथ चलता रहता है बिना गति किए भी। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंतिके, वो दूर भी है नजदीक भी है। हमने उस दिन एक उदाहरण दिया था, पेड़ में पत्ते हैं, हरे हरे पत्ते, शुरुआती नजर में जैसे ही आप पेड़ों को देखते हो हरे पत्तों से भरे, आपको लगता है कि पेड़ जिंदा है, पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, आपको लगता है कि पेड़ मर गया है। अगर कच्चे दिमाग वाले हैं लगता है पत्तों के कारण पेड़ का जीवन है, क्योंकि पत्तों के हरे होने पर पेड़ जिंदा मिलते, पत्तों के मर जाने पर पेड़ मर जाते, मतलब पेड़ों पत्तों में ही पेड़ों का जीवन छुपा है। थोड़ी समझदारी लेते हैं और गहराई में जाते हैं, आपको लगता है नहीं पत्ते तो शाखाओं में टिके तो शाखाओं में जीवन होगा, और थोड़ी गहराई में जाते हैं आपको लगता है पेड़ का जो धड़ या जो बॉडी है, शरीर है, वही पेड़ का जीवन है। जब आप बिल्कुल गहराई में जाते हैं आपको लगता है पेड़ का जीवन तो जड़ में है, और जड़ मिट्टी के नीचे गहराई में छुपा है। आपको पेड़ के जड़ जानना है तो मिट्टी के अंदर जाना पड़ेगा, मिट्टी खोदना पड़ेगा। इसी तरह शरीर का जो आधार है वो ना शरीर है, ना मन है, बुद्धि है, अंदर आत्मा है। पर समस्या क्या है, पेड़ के लिए सूरज ज्यादा नजदीक दिखता है, जबकि हजार हजार प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स दूर पर है सूरज। पत्तों के लिए, पेड़ के लिए सूरज ज्यादा नजदीक है क्योंकि रोज दिखता है, जड़ बहुत दूर है क्योंकि कभी नहीं दिखता। असलियत में क्या है, जड़ पत्ते के नजदीक है, सिर्फ 50 मीटर, 10 मीटर, या छोटे पेड़ है तो एक मीटर, आधा मीटर दूरी पर उसके जड़ छुपा है, पर पेड़ को कभी नहीं पता लगता उसका कोई जड़ है और वो जड़ कैसा है। वो सूरज को रोज जान जाता है
वो करोड़ों किलोमीटर दूर है उसके बावजूद भी हम सब उस पेड़ के पत्ते की तरह है, जो हमारे अंदर सबसे नजदीक चीज अगर कोई है वो ईश्वर है, परमात्मा है, मेरी आत्मा है। हमें उसी का ज्ञान कभी नहीं होता, पर दुनिया में करोड़ों किलोमीटर दूर क्या है हमें पता है। सूरज में किस तरह के केमिकल्स काम करते हैं, गैस है, ये हमें पता है। मंगल ग्रह में पानी है कि नहीं ये पता है। चांद में कौन सी पत्थर है ये हमें पता है। ये यहां से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के कौन से जंगल में कौन सा फूल मिलता है ये हमें पता है। हमें ये पता नहीं कि मेरे अंदर ईश्वर है या मेरी आत्मा कैसी है, मैं कैसा हूं। आत्मा दूर है क्योंकि करोड़ों जन्मों से करोड़ों लोग आत्मा को ढूंढते हैं, मिलता किसी को नहीं। कठोपनिषद में आता है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न। ये आत्मा प्रवचन से नहीं मिलती है, शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलती है, सत्संग करने से नहीं मिलती है, पूजा पाठ करने से नहीं मिलती है। फिर आप कहेंगे ये उल्टी पटांग बातें आप क्यों सिखा रहे। मैं नहीं बोल रहा हूं, कठोपनिषद बोलता है, मैं तो आपको सुना रहा हूं लाइन। बोले फिर किसको मिलता है, यमी वही शब्रणुते स्ते न लभ्य, जिसको आत्मा खुद वर्ण करती है, चूज करती है, उसको मिलती है। बोले ये तो और उटपटांग बातें हैं, मतलब वो किसको चुनेगी, वो पार्शियल होगा, फिर उसकी मर्जी, फिर मैं क्या करूं। आत्मा जिसको चुनती है उसी को आत्मा मिलती है, ईश्वर जिसको चुनता है उसी को ईश्वर दिखता है। फिर मैं कैसे जानूं कि मुझे कैसे चुनेगा। भारत में एक बड़ी समस्या है ये, आजकल जो कंपनी है, रोजगार की बड़ी समस्या, आजकल यहां भी बड़ी समस्या हुई है। क्या है कि कंपनियां कहती हैं कि हमारे पास लाखों पोस्ट खाली पड़े हैं, हमें अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे मैनेजर चाहिए, अच्छे ऑर्गेनाइजर चाहिए, पर हमारे पास लोग नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में वो प्लेस वो कैंपस प्लेसमेंट करते हैं। बेचारा बच्चा अभी बीए फर्स्ट ईयर में है तो भी उसका सिलेक्शन कर देते हैं, थर्ड ईयर के बाद तो मेरी कंपनी में आएगा, इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि उनको लोग नहीं मिलते। पर बाजार में करोड़ों संख्या में लोग, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, लाखों इंजीनियर 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए में काम करने के लिए मजबूर होते हैं भारत में। प्रॉब्लम कहां है, लोगों को नौकरी चाहिए, कंपनियों को, सरकार को नौकरी देनी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर संतुलन क्यों नहीं बन रहा, बैलेंस क्यों नहीं बन रहा है। कंपनी तैयार है महीने में लाखों रुपए देने के लिए, वो ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। वो कैंपस में जाकर के बच्चों को, फर्स्ट ईयर के बच्चों को चुन डालते हैं, 3 साल इंतजार करते हैं, और कोई 5-5, 8-8 साल तक के पढ़ के इंजीनियरिंग डिग्री लेकर घूमते, मैनेजमेंट की डिग्री लेकर घूमते, उनको नौकरी नहीं मिलती है। क्यों, योग्यता में गड़बड़ी आ रही है। जो कंपनी को चाहिए वो डिग्री तो है पर वो सामर्थ्य नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो एलिजिबिलिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है। डिग्री रखो, प्राइवेट कॉलेज में पैसा देकर, डोनेशन देकर डिग्री ले लिया, मैनेजमेंट स्कूल में लाखों रुपए पढ़ के, और नौकरी करता है 10,000 महीने रुपए में, डॉलर में नहीं। कंपनी कहती है मैं देने को तैयार हूं लाखों रुपए, पर मुझे सही आदमी नहीं मिलता। आध्यात्म जगत में भी यही हालत है, करोड़ों लोग करोड़ों सालों से करोड़ों जन्मों से ईश्वर को ढूंढते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, शरीर को तड़पाते हैं, तीर्थ करते हैं, मंदिर जाते हैं, माथा फोड़ते हैं, तपस्या करते हैं, कोई एक आधे को बिरले को अंदर शांति मिलती है, उस आत्मदर्शन होता है। क्यों? आत्मा जिसको चुने, आत्मा किसको चुनेगी? जो योग्य होगा। योग्य क्या है? योग्यता की चर्चा और कभी करेंगे। जब आपके अहंकार टूटेगा, जब आपके अंदर की मन की मैले टूटेंगे, आप सैकड़ों शास्त्र पढ़ डालो, हजारों प्रवचन सुन डालो, हजारों मंदिर में माथा फोड़ के खून निकाल डालो, लाखों रुपए दान में दे डालो, अगर तुम्हारा मन नहीं सुधरा, तुम्हारा चरित्र गंदा है, तुम्हारा मन में कोई कलुष भरे पड़े, तो कुछ नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन दे करके डिग्री लाने जैसे है, कोई नौकरी नहीं देने वाला। आत्मा मेरा सबसे अगर कोई नजदीक है वो मेरी आत्मा है, पर मेरे लिए अगर कोई सबसे दूर है वो मेरी आत्मा है, क्योंकि यही तो मुझे नहीं मिलता। कितने बाबाओं के वहां गया, कितने जगह प्रवचन सुना, कितने मंदिरों में प्रार्थना की, सब छोड़ छोड़ के भागता जा रहा हूं। कितने लोग तो धर्म बदल डालते हैं, भगवान बदल डालते हैं, कुछ नहीं होता। कभी कभी पैसे कमा लेते हैं, कभी कभी नाम कमा लेते हैं। नाम क्या? बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, देखो कितना मोटा तुलसी का माला पहना है, कितनी मोटी चंदन की तिलक लगा रखा है, कितना बड़ा क्रॉस लटका रखा है, कितनी देखो मूंछ काट के दाढ़ी लटका रखा है, टोपी पहन रखा है, बड़ा धार्मिक जरूर होगा, कितना बढ़िया मंत्र बोलता है, कुरान की लाइनें सुनाता है, जो मतलब नाम कमा लेता है, पर अंदर उतना अशांत जितना नीचे वाला अशांत है, ऊपर वाला भी उतना ही अशांत है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, वो दूर है क्योंकि हमें ढूंढने पर नहीं मिलता, वो नजदीक है क्योंकि मेरे सबसे नजदीक तो वही है, पत्ते का सबसे नजदीक तो जड़ है, पर जड़ उसको कभी नहीं मिलता। तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो सबके अंदर है सबके बाहर है। जो बाहर होगा वो अंदर कैसे होगा, जो अंदर होगा वो बाहर कैसे होगा? क्या दरवाजे पर खड़ा होकर के आधा शरीर इधर रखा आधा उधर रखा? ऐसा नहीं। ये आकाश देखते हैं, स्पेस कहते हैं। जब आप घर के बाहर खड़े हो जाते हो, मैदान में खड़ा हो जाते हो, आपको महाकाश दिखता है। जब आप दीवार खड़ा कर दे अपनी बिल्डिंग बनाते हो, तो दीवार के अंदर भी स्पेस होता है, उसको संस्कृत में बोलते हैं गृहाकाश, मतलब घर का स्पेस। आप एक घड़ा बनाते हो, घर के अंदर भी स्पेस है, उसको संस्कृत में बोलते हैं ये घटाकाश, घड़े के अंदर का स्पेस है। और जब आप घड़ा तोड़ देते हो, बिल्डिंग को तोड़ देते हो, आपका स्पेस और बाहर का स्पेस एक हो जाता है, तो महाकाश है। वो जो आपके घर के अंदर का स्पेस है वो कोई अलग नहीं है बाहर के स्पेस से, वो एक ही है। आपने दीवार खड़ा करके अलग किया, पर वो महाकाश और घर के अंदर का आकाश एक ही है। बस आप कहते हो ये मेरे अंदर का आकाश है, वो मेरे बाहर का आकाश है, दोनों एक ही है। वो परमात्मा जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे बाहर भी है। बस शरीर का बोध मिट जाए, मन का अहंकार मिट जाए, पर आपको कीड़े में भी वो ईश्वर का दर्शन होगा। जैसा आप अपने आप को फील करते हो, आप कीड़े में भी उसी दर्द को एहसास करोगे, चींटी में भी उसी आत्मा को एहसास करोगे, उस बकरी में भी उसी आत्मा को एहसास करोगे, उस मुर्गे में भी उस आत्मा को एहसास करोगे, अपने अंदर जिस आत्मा को एहसास करते हो। वो अंदर भी है बाहर भी है, एहसास नहीं होता इसीलिए वो बाहर दिखता है। मंदिरों में देखने की कोशिश करते हैं, एहसास हो जाए तो वो अंदर भी एहसास होने लगेगा। मंत्र का सार है, दोबारा मंत्र पढ़ लेता हूं। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो आत्मा चलता भी है नहीं भी चलता, वो दूर भी है नजदीक भी है, वो अंदर भी है वो बाहर भी है। ओम शांति।